हरे कृष्ण। महाभारत की इन कक्षाओं में अब तक चर्चा हो चुकी है कि कैसे पांडवों को वन में भेजा गया द्यूत क्रीड़ा में छल के द्वारा, और फिर एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ। उसके बाद जब एक दूत को भेजा गया, द्रुपद के पुरोहित को पहले भेजा गया ये कहने के लिए कि पांडवों का राज्य उनको वापस दिया जाए नहीं तो युद्ध होगा, धृतराष्ट्र घबराए। उन्होंने फिर अपनी ओर से संजय को भेजा कि जाइए, आप जाकर उनको कहिए, समझाइए। संजय ने आकर फिर संदेश दिया कि कैसे वे सब युद्ध के लिए तैयार हैं अगर राज्य नहीं दिया गया। और उधर युधिष्ठिर को जब पता चला कि कैसे ये लोग राज्य देने के लिए तैयार नहीं हैं, दुर्योधन ने अस्वीकार किया, तो उन्होंने कृष्ण से चर्चा की और कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा। कृष्ण जान गए कि युधिष्ठिर के हृदय में ये बात है कि वे जाएं, क्योंकि युधिष्ठिर चाहते नहीं थे कि युद्ध हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण जाएंगे तो हो सकता है कि कृष्ण की बात मानकर ये दुर्योधन इत्यादि युद्ध बंद कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कृष्ण जान गए और कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन एक तरफ थोड़ा बहुत भय भी था धृतराष्ट्र को इस चीज का कि धृतराष्ट्र को नहीं युधिष्ठिर को कि इस चीज का कि अगर भगवान गए वहां पर अपमान हो गया उनका तो क्या होगा, ये तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी कि मेरी वजह से भगवान का अपमान हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो, मेरा अपमान या मुझे कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ उन्होंने वहां पर मुझसे युद्ध किया भी तो मैं अकेले ही सबको मार दूंगा, तुम चिंता नहीं करना। तो फिर अब वो शांति दूत के रूप में धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में जाने के लिए तैयार हैं। तो आज चर्चा करेंगे भगवान के शांति दूत बनकर जाने की। महाभारत की बहुत से प्रसंगों में श्री कृष्ण का वात्सल्य प्रेम बहुत उमड़ कर आता है। कई लीलाओं में, कई प्रसंगों में हम देखते हैं कि कैसे श्री कृष्ण अपने इस वात्सल्य रूप को प्रकट करते हैं, विशेषतः महाभारत में। जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन के सारथी वो बनेंगे आगे चल के, ये भी एक उनका भक्त वात्सल्य रूप है। तो ऐसा ही एक रूप अब वो शांति दूत के रूप में दर्शाने वाले हैं। भगवान जब कोई लीला करते हैं, भगवान के संग में जब कोई प्रसंग होता है, तो उससे भगवान कई चीजों को स्थापित करते हैं। तो इस लीला से, अर्थात शांति दूत बन के जाने की लीला से, भगवान ने कई सारे सिद्धांतों को स्थापित किया। पहला सिद्धांत उन्होंने ये स्थापित किया कि वो अपने भक्त के लिए कोई भी स्थिति लेने के लिए तैयार हैं। जैसे एक दूत कोई बहुत अच्छे व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत जो शक्तिशाली हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, उसको दूत बनाकर भेजा जाए, ऐसा नहीं। दूत तो कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति जो बोलने बोलने में ठीक हो उसको भेज दिया जाता, क्योंकि दूत का काम क्या है, केवल जाना है, जो उन्होंने कहा उसको बोलना है, जो यहां कहे उसको सुना देना है, बस। तो भगवान एक ऐसी स्थिति को स्वीकार करते हैं ये दिखलाने के लिए कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, और अपने भक्तों के प्रेमवश वो कोई भी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो भक्त वात्सल्य रूप उनका इसमें प्रकट होता है कि भगवान एक दूत बने, शांति दूत बनकर जा रहे हैं। दूसरी शिक्षा भगवान इसके द्वारा हमें ये भी देते हैं कि कैसे भगवान को आकर्षित करने के लिए इस जगत के प्रलोभन पूर्ण नहीं है। अगर इस जगत की सुविधाएं, इस जगत की चीजें भगवान को अर्पण की जाएं, तो वो पूर्ण नहीं है, ये भगवान इससे दिखलाते हैं। जैसे जैसे इस कथा को आगे कहेंगे, इन सारे सिद्धांतों को भी आपको बतलाएंगे, अभी सारांश में बता रहे हैं। फिर तीसरी चीज भगवान इस लीला से ये दिखलाते हैं कि कैसे जो व्यक्ति भक्तों से द्वेष करता है, भगवान उसकी किसी भी पूजा आराधना को स्वीकार नहीं करते। ये तीसरी चीज भगवान इस लीला से दिखलाते हैं कि अगर कोई भक्तों से द्वेष करता है, भक्तों के प्रति घृणा करता है, तो फिर भगवान उसकी पूजा आराधना स्वीकार नहीं करते। चौथी चीज भगवान इस लीला से दिखलाते हैं कि भगवान प्रेम चाहते हैं। अगर उनको आकर्षित करना है तो उनको प्रेम से आकर्षित किया जा सकता है। ये चौथी चीज भगवान इस लीला से दर्शाते हैं। और पांचवी चीज भगवान ये दर्शाते हैं कि जिन लोगों की आसक्ति बहुत ज्यादा भोगों में होती है, सत्ता में होती है, इस भौतिक जगत में होती है, वे भगवान को समक्ष पाकर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये पांचवी चीज वो समझाते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज इस लीला से वो समझाते हैं कि जैसे इस लीला जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका वर्णन करेंगे कि और एक चीज से समझाते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं भगवान के, तो ऐसे लोग भगवान का विरोध करते हैं। भगवान को कहना चाहिए कि भगवान को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान इस जगत के लाभ हानि या किसी भी तरह के चीजों से परे हैं, ये भगवान इस लीला में दिखलाते हैं। तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा इस लीला के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान ने शांति दूत बनना स्वीकार किया, उनका भक्त वात्सल्य रूप। अब वो चल रहे हैं, तैयार हो गए, सुबह अपनी सारी क्रियाएं करके तैयार हैं जाने के लिए। तो सब पीछे पीछे चल दिए, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल, सहदेव, जितने वहाँ पर ऋषि मुनि हैं, सब चले उनके साथ में। भगवान जब जाते हैं तो भगवान अकेले नहीं जाते हैं। अब भगवान जा रहे हैं, हालांकि उन्हें अकेले जाना है क्योंकि दूत हैं। दूत के रूप में तो सारे लोगों को ले जा नहीं सकते, वो अकेले ही जाएंगे, लेकिन अब चले हैं तो एक मान सम्मान देने के लिए। ये एक प्रक्रिया है, हम महाभारत में हर स्थान में देखते हैं, भागवत में कहा गया कि जिस समय श्री कृष्ण जाने लगे तो सब उनके साथ साथ थोड़े आगे तक उनको छोड़ने के लिए आते हैं। ये नियम है कि जब कोई प्रियजन जा रहे हैं, कोई वरिष्ठ जा रहे हैं, तो उनको हम आगे तक थोड़ा सा चलकर छोड़कर आना चाहिए। पहले नियम ये था कि गांव के सीमा तक छोड़कर आते थे। जब कोई महान व्यक्ति आते थे तो उनके गाँव की सीमा से उनका स्वागत करके लेकर आना, और जब वे जा रहे हैं तो उनको गांव की सीमा तक छोड़ कर आना, ये नियम था। तो गांव की सीमा तो रही नहीं है, गांव की सीमाएं तो बड़ी किलोमीटर की हो गई हैं, तो कहाँ तक, तो कम से कम थोड़ा आगे तक छोड़ना चाहिए, थोड़ा आगे तक चलना चाहिए। तो सब चले, युधिष्ठिर इत्यादि सब चले, जितने राजा थे सब चले। फिर थोड़ा सा आगे जाकर प्रणाम करके युधिष्ठिर महाराज ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप जब मेरी माता कुंती से मिलेंगे तो उनको मेरा संदेश, बाकी सबके लिए उन्होंने प्रणाम भेजा कि जितने भी जो वरिष्ठ हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबको मेरा प्रणाम दीजिएगा, लेकिन जब आप कुंती से मिलेंगे, मेरी माता से, तो उनसे कहिएगा कि मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि वो बहुत चिंतित होंगी मुझे ध्यान है कि जब हम लोग वन के लिए निकले थे तो कैसे वो पीछे पीछे भागी थी और गिर पड़ी थी मूर्छित होकर हमारी ऐसी अवस्था को देखकर। तो स्वाभाविक है बहुत दुख में होंगी, बड़े कष्ट में होंगी। और अब करीब 14वां वर्ष चल रहा है, उन्होंने देखा नहीं है हमें। तो इसीलिए आप उनसे जाकर कहिएगा कि हम लोग बड़े कुशल से हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता है, उनको कभी सुख मिला नहीं। कुंती महारानी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है कि जिन्होंने जीवन भर कष्टों को सहा। जीवन के अंत में थोड़ा समय जब युधिष्ठिर राजा बन गए, वो भी थोड़े समय के लिए था, फिर उनको पता चला कि कृष्ण चले गए हैं, तो उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। तो इसीलिए इसका वर्णन स्वयं भीष्म देव करते हैं। जब वो बाणों की शैया पर होते हैं तो भीष्म देव कहते हैं कि मुझे पांडवों ने कष्ट सहा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता कुंती की है, उसने कितना कष्ट सहा। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने संदेश कहा कि उनको थोड़ा सांत्वना आप दीजिएगा। तो फिर वहां से प्रणाम करके वे लोग वापस चले, लेकिन ऋषि मुनि सारे साथ में चल रहे हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सब। नारद आदि का वर्णन है कि सब चल रहे हैं भगवान के साथ। तो भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम भी आपके साथ हस्तिनापुर आने वाले हैं। अरे आप हस्तिनापुर क्यों, शांति दूत तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने ये जान लिया है कि आप हस्तिनापुर में आप कुछ बोलने जा रहे हैं, और आप बोलेंगे और उसको हम नहीं सुने, ये कैसे हो सकता है? कितना सुंदर बात है ना, भगवान बोलने जा रहे हैं और वो भी कोई विशेष बात बोलने जा रहे हैं, ये एक विशेष प्रसंग है ना, और भगवान क्या बोलेंगे ये सुनने के लिए तो सब आतुर रहेंगे, वहां पे सारे लोग इंतजार करेंगे भगवान क्या बोलने वाले, कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो सारे ऋषि मुनि कहने लगे कि आप बोलने वाले हैं और हम नहीं सुने, ऐसे कैसे हो सकता, फिर साधु होने का लाभ ही क्या है? ऐसा कहा नहीं उन्होंने, लेकिन हम बता रहे हैं, साधु होने का लाभ क्या है अगर जो भगवान कह रहे हैं उसको सुने नहीं। हमें पता चले कि साधु तो वो है कि जब उसको पता चलता है कि कहीं कृष्ण कथा हो रही है तो बिना इन्विटेशन के पहुंच जाता है, उसको कोई आमंत्रण नहीं चाहिए, अरे कृष्ण कथा हो रही है देखेंगे, बुलाया नहीं मुझे, तो पहुंच जाता है वो साधु। और यहां तो स्वयं कृष्ण बोलने वाले हैं, तो फिर साधु कैसे नहीं पहुंचेंगे, सारे ऋषि मुनि कैसे नहीं पहुंचेंगे? भगवान की वाणी को तो ही वो जीवन भर याद करते हैं, भगवान की वाणी को ही तो जीवन भर दोहराते हैं जो वेदों में कही गई है, वही तो ऋषि मुनि है ना। तो जो जीवन भर भगवान की वाणी को दोहराते हैं, आज उनके सामने प्रत्यक्ष भगवान कुछ विशेष बात बोलने वाले हैं, तो फिर वो कैसे नहीं सुने? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो खैर, लेकिन उन्होंने कहा, ऋषि मुनि जानते थे कि भगवान अनुमति नहीं देंगे क्योंकि दूत को अकेले जाना है, तो उन्होंने कहा हम आपसे वहां पर मिलेंगे हस्तिनापुर में। अर्थात ऋषि मुनियों की अपनी शक्ति थी, उनको कोई रथ इत्यादि की आवश्यकता नहीं थी, भगवान रथ पे जा रहे थे। ऋषि मुनियों ने कहा आपको वहां मिलेंगे हम, मतलब उनके अपने व्यवस्था थी, किसी भी तरह पहुंच जाएंगे, नदी में एक जगह डुबकी मारेंगे दूसरी जगह निकलेंगे, उनको कोई चिंता नहीं रथवत है या नहीं है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऋषि मुनि जो होते हैं पहले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान इसी तरह जाया करते थे, नदी होती थी तो नदी में डुबकी एक जगह लगाते थे, बस ऐसे गए निकले कई हजार किलोमीटर आगे। और इतना ही नहीं, हजार किलोमीटर ही नहीं, वे लोग तो स्वर्ग से भी इस पृथ्वी पर ऐसे ही आ जाया करते थे, क्योंकि जो गंगा है वो तीनों लोकों में बहती हैं, तो तीनों लोकों में बहती हैं, इसीलिए गंगा में स्वर्ग में डुबकी लगाते थे, पृथ्वी पर निकलते थे। तो ऋषि मुनियों ने कहा हम आ जाएंगे, आप चिंता नहीं, वहां पर मिलेंगे आपको। तो ठीक है, कृष्ण चल दिए। अब कृष्ण, ऐसा वर्णन है कि जहां भी गए, जिन स्थानों पे, उन्होंने अपने दिन के नियम, संध्या वंदन इत्यादि सबको करते हुए वो चले। अब इधर हस्तिनापुर में सूचना मिल गई कृष्ण आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई तुरंत, और धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने सुना है श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो तो भगवान है, वर्णन करते धृतराष्ट्र। देखिए मूर्खता, जानता है, कह रहा है भगवान है, लेकिन जब बात आई कि उनको कुछ देना है, वो मांगने के लिए खड़े हुए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, वो नहीं दिया, तब भगवान नहीं है। तो अब वो कह रहे कि उनका स्वागत होना चाहिए, तो सब लोग तैयारी करो, उस शहर को सजा दो, जहां जहां बीच में जहां जहां वो आने वाले हैं उस स्थान पर अच्छी व्यवस्था करो। दुर्योधन से कहा कि जाओ सारे स्थानों पर व्यवस्था कर दो, उनके उनके आराम की, उनके भोजन की, जहां जहां से वो निकलेंगे, और उनको प्रसन्न करो। दुर्योधन किस लिए कह रहे थे? इसलिए नहीं कि वो भगवान है, कि शायद प्रसन्न हो जाए तो हमारी तरफ आ जाए, जैसे शाल्य आ गए थे। आपको याद है ना कि जब वो आ रहे थे, तो वैसे तो वो माद्री के भाई हैं, तो माद्री के भाई होने के कारण पांडवों की तरफ जाना था, लेकिन युधिष्ठिर दुर्योधन ने इतनी व्यवस्था उनकी कर दी कि उन्होंने कहा जिसने भी मेरे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है, बस मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। दुर्योधन सामने आ गया, मैं तो इसलिए उनके लिए व्यवस्था करो, कृष्ण के लिए बढ़िया व्यवस्था, एकदम अच्छे अच्छे उनके रहने के लिए, उनके विश्राम के लिए स्थान बनाओ, भोजन के लिए, तो सारी व्यवस्था की गई कई स्थानों पर। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा वर्णन है कि आप सोचिए, मतलब व्यवस्था जैसे पहले व्यवस्थाएं नहीं होती थी जब व्यक्ति चला करते थे, अभी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तभी नहीं होती थी तो रास्ते में व्यवस्थाएं की गई, जैसे उनके लिए पूरा बनाया गया रहने की व्यवस्था, तंबू इत्यादि लगाए गए, और भोजन की व्यवस्था, दास दासियों की व्यवस्था, उनके आराम के लिए व्यवस्था, सब कुछ कर दिया दुर्योधन ने। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि भगवान ने उसकी ओर देखा भी नहीं, इतना वर्णन, इतना उन्होंने व्यवस्था की, दुर्योधन से कहकर बहुत व्यवस्था करवा दी, धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो यहां भगवान, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताए कि इस कथा से हम लोग कई चीजों को सीखेंगे, तो पहली चीज क्या थी? भगवान भक्तवत्सल हैं, इसीलिए एक दूत बनने को तैयार हुए। और अब यहां पर देख रहे हैं कि भगवान को कोई भौतिक ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं किया जा सकता, कि जैसे भगवान को इतना कुछ कर दिया दुर्योधन ने, इतनी व्यवस्था, तो शायद भगवान भी हाँ बहुत अच्छा है, अब दुर्योधन जो मांगो। नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता? एक तरफ कहा जाता है कि भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, दुर्योधन ने सेवा की भगवान की, फिर भगवान प्रसन्न क्यों नहीं? अरे इतना हम लोग सेवा की बात करते, भगवान की सेवा से, सब कुछ सेवा से, और यहां दुर्योधन भाग भाग कर सेवा कर रहा है, उनके लिए व्यवस्था की, सब बनाया उनके लिए, भगवान ने देखा भी नहीं। क्यों? भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव जानते हैं कि किस तरह से, किस भाव में वो सेवा कर रहा। इसीलिए देखिए, भगवान को सुविधाएं अर्पण करना आवश्यक है, लेकिन सही भाव में, गलत भाव में नहीं। उनसे द्वेष करना, उनको अपनी तरफ खींच लेना, कोई भौतिक चीजों के लिए करना, भगवान प्रसन्न नहीं होते इनसे। तो कृष्ण ने देखा भी नहीं। और इधर धृतराष्ट्र विदुर को बुलाया, सबको बुलाया, कहने लगा विदुर जान लो श्री कृष्ण आ रहे हैं और मैं उन्हें बहुत सा उपहार देने वाला हूं। अब वो उपहार का वर्णन करने लगा कि क्या क्या मैं दूंगा। तो देखिए किस तरह से जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो कुछ अपना मतलब निकालना चाहते हैं भगवान की भक्ति से, तो वे कैसे उनका भाव होता है, तो उस समय वो देने तैयार हैं। देखते हैं ना, कई बार लोग बहुत सारा कभी कभी धन देते हैं भगवान को कि मैं धन देना चाहता हूँ। इच्छा क्या है? वो मैंने बहुत स्मगलिंग करके पैसा कमाया है, तो पुलिस पकड़े नहीं मुझे, इसीलिए थोड़ा भगवान मेरा प्रोटेक्शन करें। तो धृतराष्ट्र कह रहा है विदुर से कि मैं बहुत गिफ्ट मैंने तैयार कर लिए उपहार भगवान को देने के लिए। क्या उपहार किए हैं? कि मैंने रथ बनाए हैं, 16 रथ, हर एक में 4-4 घोड़े हैं, सोने उसमें जड़ा हुआ है, वो रथ मैं उनको देने वाला हूं, और 8 बड़े शक्तिशाली हाथी देने वाला। ये उपहार दे रहे हैं ऐसे कि कृष्ण आए, हाथी देने वाला हूं, 100 दास और 100 दासियां देने वाला हूं, मैं सबको मैंने तैयार कर लिया है। सबके सामने बता रहे कि देखो मैं कृष्ण को कितना कुछ दे रहा हूं, और फिर 18,000 कंबल देने वाला हूं। पता नहीं क्यों कंबलों की बात की उसने, शायद ठंडी का समय होगा, उत्तर भारत में वैसे भी ठंड बहुत होती है, तो 18,000 बहुत कोमल कंबल उनको देने वाला हूं, बहुत अच्छे जो ऊन से बने हुए हैं, तो वो कंबल मैं उनको देने वाला हूं। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन किया कि ये दूंगा वो दूंगा, विदुर सुन रहे थे। तो फिर विदुर ने बोलना शुरू किया, जब उन्होंने बहुत बोल दिया ये दूंगा वो दूंगा ये तैयार है, थोड़ा बात मत कीजिए, तो विदुर सुन रहे हैं बड़ी देरी से, हाँ इतना देने वाले ये देने वाले हैं। तो फिर विदुर ने बोलना शुरू किया, और विदुर ने पहली चीज कही, बहुत अच्छा है महाराज, आप भगवान को कृष्ण को ये सब अर्पण करने वाले हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है, दिखावा बंद कीजिए। सीधा विदुर को जैसे बोलते नहीं थे इधर, सीधा बोले दिखावा बंद कीजिए, ये जो सब आप दिखा रहे हैं ना कि ये मैं कर रहा हूं, आपके हृदय में क्या है मैं जानता हूं, आप कुछ देना नहीं चाहते हैं कृष्ण को, अगर देना ही चाहते हैं तो 5 गांव मांगे हैं पांडव ने, क्या आप देंगे? धृतराष्ट्र चुप हो गए। अभी देखिए कितने बड़ी बड़ी बातें ना, 100 दास दे रहा हूं, दासियां दे रहा हूं, रथ बना दिए, हाथी दे रहा हूं, घोड़े दे रहा हूं, रत्न दे रहा हूं, कंबल दे रहा हूं, जो मांगा है वो कब दोगे? तो धृतराष्ट्र को विदुर कहते हैं, सर दिखावा बंद कीजिए, आप कुछ देने वाले नहीं, आपको कोई आसक्ति नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं, मांगा है उन्होंने 5 गांव, क्या आप देंगे? विदुर वो तो नहीं दे सकते, क्योंकि विदुर को जान धृतराष्ट्र वो नहीं दे सकते। तो फिर विदुर ने समझाया, देखिए अब अच्छा समय है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, आप अभी भी मान जाइए, अभी भी अपनी ये जिद छोड़ दीजिए, अपने पुत्र को समझाइए, अपने दुरात्मा पुत्र को, विदुर सामने ही बोलते थे। आप सोचिए क्या क्या दुर्योधन को सुनना पड़ता था ना, सामने वो राजा बना बैठा है और विदुर खड़े होकर बोलते ये दुरात्मा पुत्र आपका। हम लोगों को कितना बुरा लगता है कोई हमारे सामने, पीछे बोले ठीक है लेकिन सामने बोल दे, हमें कितना बुरा लग जाता है ना, कोई आपको आके बोले ये दुरात्मा, आपको कैसे लगेगा? आप बोलोगे कि ठीक है अभी तो मंदिर में बैठा हूं, बाहर निकलता तो दिखाता हूं आपको दुरात्मा। तो ऐसे दुर्योधन को तो कितनी बार सुनना पड़ा था, किस किस ने, कृष्ण ने भी सुनाया, कृष्ण भी सुनाएंगे आके, सामने ही बोलते थे अपने दुष्ट पुत्र को संभालिए महाराज, भीष्म कहते थे, विदुर तो कहते ही रहते थे, इसीलिए जब अवसर मिला दुर्योधन को तो विदुर को सबसे पहले बाहर कर दिया। तो विदुर ने कहा कि अब भी समय है, आप समझाइए, रहने दीजिए। तो उस समय जो दुर्योधन था उसको बड़ा क्रोध आ गया कि ये कैसे उन्होंने कह दिया कि 5 गांव देना। दुर्योधन खड़ा हो गया, बोले कुछ नहीं देना, कोई आवश्यकता नहीं है उनको कुछ देने की, और कृष्ण आ रहे हैं, मैंने उनके लिए योजना बनाई हुई है। अच्छा क्या योजना बनाई है? मैं उन्हें गिरफ्तार करने वाला हूं। ये दुर्योधन की योजना थी कि आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से योजना बना के रखी है कि कृष्ण आएंगे तो मैं उन्हें कारागृह में डालने वाला हूं, और एक बार मैंने उन्हें कारागृह में डाल दिया तो फिर पांडवों की शक्ति नहीं रहेगी, पांडव क्या बाकी भी जितने उनके साथ में रहने वाले राजा, उनकी शक्ति नहीं रहेगी, फिर हमारा ही राज्य होगा। भीष्म खड़े हुए, भीष्म ने कहा मूर्ख, भीष्म ने कहा किस क्या बात, क्या सोचा भी कैसे तुमने कि ये कर सकते हो? तो बहुत ऐसे वार्ता हुई, संवाद हुआ, भीष्म वहां से गुस्से में उठकर चले गए, क्योंकि इस तरह ऐसे वो विचार कर रहा है, तो भीष्म चले गए बोलकर कि ये तो नाश होगा निश्चित, समझाओ धृतराष्ट्र को, कहा अभी भी समझाओ समय है, लेकिन धृतराष्ट्र चुप बैठे रहे क्योंकि उनकी भी इच्छा नहीं थी कि दें। तो खैर फिर श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान को देने के लिए हम जब तैयार होते हैं केवल इस भाव से कि हमें कुछ मिले, धृतराष्ट्र ने इतने सारे उपहार इसलिए तैयार किए ताकि कृष्ण हमारी तरफ आ जाएं, पांडवों की तरफ नहीं रहें। बस तो उपहारों से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान आकृष्ट नहीं होते। तो भगवान आए, अब हस्तिनापुर में उन्होंने प्रवेश किया तो धृतराष्ट्र ने सबको भेजा। महाभारत में वर्णन है कि दुर्योधन को छोड़ के सारे लोग गए थे स्वागत करने के लिए, दुर्योधन नहीं गया। धृतराष्ट्र ने भेजा भी नहीं होगा, तू बेटर है वहां जाके भी झगड़ा करेगा, इधर ही बैठ जा। तो सारे लोग गए, सारे पुत्र गए थे, एक खाली दुर्योधन नहीं गया था। द्रोणाचार्य गए, भीष्म गए, सब गए, सब ने स्वागत किया जब उन्होंने प्रवेश किया हस्तिनापुर में। और उनके साथ सबके साथ कृष्ण ने फिर महल में प्रवेश किया, सब उनको लेकर आए। फिर उनको बहुत बैठने के लिए बहुत सोने का आसन था, उन पर उनको बिठाया गया। धृतराष्ट्र ने उनको कहा कि आप बैठिए, तो ऐसे कृष्ण का बहुत स्वागत हुआ बहुत अच्छी तरह से। और फिर श्री कृष्ण जब ऐसे सब स्वागत हो गया, सबसे मिले, उसके बाद विदुर के साथ उनके घर चले गए, क्योंकि विदुर के घर पर उनको कुंती महारानी से भी मिलना था। तो विदुर के घर चले गए, विदुर ने उनका स्वागत किया, विदुर को बड़ा आनंद आया। और फिर विदुर से वो बात करके फिर कुंती महारानी के पास गए, क्योंकि वो जाना चाहते थे, वो भी मिले नहीं थे। बुआ हैं उनकी, उनके पिता की बहन है कुंती महारानी, ये शूरसेन की पुत्री हैं, अर्थात वसुदेव की बहन, वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता हैं। तो कुंती ये शूरसेन की पुत्री हैं और उन्होंने महाराज कुंती भोज को उन्हें गोद दे दिया था, इसीलिए उनका नाम कुंती हुआ। वैसे उनका नाम था पृथा, तो फिर आगे चल के क्योंकि कुंती भोज की पुत्री हुई इसीलिए कुंती नाम हुआ उनका। तो वे मिलने गए, प्रणाम किया उन्होंने, और उनको देखते ही, क्योंकि कुंती जानती थी कि ये मेरे पुत्रों के पास से आ रहे हैं, कुंती बहुत रोने लगी। और कुंती सारे उन चीज़ों को याद करने लगी। कुंती कहने लगी कि मेरे पुत्र कैसे हैं, आज 14वां वर्ष अब चल रहा है, मैंने अपने पुत्रों को देखा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं था। मैं एक दिन अगर अपने पुत्रों को नहीं देखूं कुछ समय के लिए तो मैं जी नहीं पाती थी, लेकिन अब 14 वर्ष हो गए तो कैसे हैं। हर एक का पूछने लगी, युधिष्ठिर कैसे, भीम कैसे हैं, अर्जुन कैसे, नकुल, सहदेव कैसे हैं, वो पूछने लगी। और फिर वो विलाप करने लगी। कुंती महारानी कहने लगी कि इतना कष्ट हुआ लेकिन मुझे कष्टों की चिंता नहीं है, राज्य चला गया मुझे उसकी चिंता नहीं है, वन में जाना पड़ा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरी जो पुत्र वधु है द्रौपदी, उसका अपमान हुआ। और उस समय कोई कुछ बोले नहीं, सब वहां उपस्थित थे, लेकिन हाँ वो कहती हैं कि मैं विदुर का सम्मान करती हूँ, क्योंकि उन सब में उस समय केवल विदुर थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, बाकी कोई कुछ नहीं बोले। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे थे, विरोध किया तो केवल विदुर ने। तो कुंती कहती है इसलिए मैं विदुर का सम्मान करती हूँ कि जब मेरी पुत्र वधु, उसका अपमान हो रहा था, उसको ऐसे खींच कर लाया गया था और कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं था, तो उस समय विदुर ने विरोध किया था। कम से कम विरोध तो किया, ठीक है वो बचा नहीं पाए, सहायता नहीं कर पाए, लेकिन विरोध किया। तो मुझे उसका दुख है कि कैसे वो रह रही होगी। और फिर मैं अपने दुखों के लिए किसी दूसरे को तो दोष नहीं देती हूं। फिर वो अपने पहले से बताने लग गई कि मेरे पिता ने भी मुझे जन्म देने के बाद किसी और को दे दिया, अपने पास नहीं रखा, शूरसेन ने नहीं रखा, उन्होंने गोद दे दिया कुंती भोज को। तो बोले मेरे पिता ने भी, मतलब मुझे बचपन से ही कष्टों का प्रारंभ हो गया कि जन्म हुआ और थोड़े समय बाद, वो बताती हैं कि मैं उस समय बहुत छोटी थी, गेंद से खेला करती थी, ये वो कहती हैं श्री कृष्ण को, मैं बहुत छोटी थी और मेरे पिता ने कुंती भोज को दे दिया, तो जैसे कुछ दान दिया जाता है ऐसे मुझे दान दे दिया उन्होंने। मतलब उनको दुख प्रकट कर रही हैं कि पिता ने भी नहीं रखा, फिर मैं उनके यहाँ बड़ी हुई कुंती भोज के यहाँ। और फिर जब विवाह हुआ तो यहाँ पर तकलीफें, हस्तिनापुर में पांडु महाराज के साथ वन में काफी समय रहीं, फिर उसके बाद कष्ट ही कष्ट हुए उनको जीवन में। तो कुंती महारानी कहने लगी कि जीवन में बड़े कष्ट हुए हैं और अब इतना बड़ा कष्ट कि मेरे जो पुत्र हैं जिनको राज्य करना चाहिए था, तो वे लोग इस समय वन में रह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो सब ठीक है ना। तो फिर कृष्ण ने उनको बताया कि आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने वे लोग आएंगे और राजा बनेंगे वे सब, आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा संदेश देना जाकर। देखिए, कुंती महारानी श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप जब वापस जाओ तो मेरा संदेश देना युधिष्ठिर को, क्योंकि वो जानती थी कि युधिष्ठिर एक है जो युद्ध करना नहीं चाहता है। अर्जुन और भीम को तो संदेश देने की जरूरत नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों को संदेश देना, और बाकी चीजों में उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि उनको कहना कि क्षत्राणियां जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती हैं वो समय आ गया है। यानी वो भी जानती थी कि युद्ध होगा, तो युद्ध से बचे नहीं, ये संदेश दिया उन्होंने, भागे नहीं युद्ध से। अर्जुन से ये कहना, भीम से ये कहना, युधिष्ठिर से ये कहना, नकुल, सहदेव कि अब उन्हें युद्ध करना है, समय आ गया, तो अब उन्हें जिस कार्य के लिए मैंने उन्हें जन्म दिया है वो समय आ गया। तो देखिए कितने क्षत्राणियां या अर्थात क्षत्रियों को गर्व होता था कि वो अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होते थे। आजकल के समय में ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं जो मान सम्मान के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन पहले ऐसा समय था। तो कुंती महारानी ने ऐसा संदेश दिया, भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जाकर समझाऊंगा और युद्ध तो होना ही है। देखिए, जो शांति दूत बनकर आए हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए। वो तो आने से पहले ही, पिछली बार हमने बताया था, जब वो चलने लगे तो द्रौपदी ने अपने बाल दिखाए कि देखो अभी तक बाल बांधे नहीं है मैंने, और आप जा रहे हो शांति दूत बनकर। दरअसल जब वो शांति दूत बनकर जाने लगे तो अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग भाव था। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि श्री कृष्ण अगर जाएंगे तो हो सकता है शांति हो जाए, क्योंकि बोलने में बड़े दक्ष हैं, वो समझाएंगे तो कौन नहीं समझता है ना, श्री कृष्ण समझाएं तो कौन नहीं समझेगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो जाएंगे। अर्जुन सोच रहे थे कि अच्छा है श्री कृष्ण जा रहे हैं, निश्चित युद्ध होगा। इसीलिए उन्होंने जाते समय संदेश भी दिया था अर्जुन ने कि आप जब जा रहे हो तो आप भीष्म इत्यादि को मेरा संदेश देना कि ये दुर्योधन तो मानने वाला नहीं और युद्ध निश्चित, युद्ध में सारे मारे जाएंगे। तो अर्जुन सोच रहे थे कि अच्छा है कृष्ण जा रहे हैं क्योंकि निश्चित युद्ध होगा, युधिष्ठिर सोच रहे थे अच्छा है कृष्ण जा रहे हैं शायद शांति हो जाए, और द्रौपदी वो भ्रम में थी कृष्ण क्यों जा रहे हैं, क्या शांति होगी, युद्ध होगा, इसीलिए उसने कह दिया भाई शांति नहीं रख। तो जाने से पहले ही भगवान उसको कह के गए चिंता मत करो, सारी कौरव स्त्रियां जैसे आज तुम रो रही हो वो सब रोने वाली है बहुत जल्दी, मतलब वो सब मरने वाले हैं, युद्ध होने वाला है। तो जो शांति दूत बनकर जा रहे हैं उनको पहले से पता है कि युद्ध होने वाला है, और वो कह ही रहे हैं कि युद्ध होगा, तो क्या शांति आने वाली है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं थे कि शांति हो, वो तो चाहते थे कि युद्ध हो। क्यों चाहते थे युद्ध हो, ताकि जितना पृथ्वी का भार है जिसके लिए वो आए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान तो चाहते थे कि युद्ध हो। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री कृष्ण यहाँ कुंती से भी कह रहे हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, युद्ध होगा। उसके बाद फिर श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में गए, दुर्योधन के महल में जाना था, दुर्योधन ने बुलाया, तो दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी श्री कृष्ण के लिए, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हुए थे, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब इतना बढ़िया किया हुआ था। तो भगवान तो चले गए थे विदुर के यहाँ, तो जब आए तो सब कुछ प्रस्तुत किया गया, भगवान ने कुछ स्वीकार ही नहीं किया, जो भी लाए भगवान ने लिया ही नहीं, पानी तक नहीं पिया, ऐसा वर्णन है दुर्योधन का। तो दुर्योधन क्रोधित हो जाता, अपमान है ना, आप किसी के घर में जाओ और वो सब ला के दे, बोले मैं नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो अपमान है ना उसका व्यक्ति का, क्योंकि ला कर दे रहा है, कम से कम नहीं भी खाना तो पानी ले लेना चाहिए, चलिए पानी ले लिया, कुछ फल ले लिया, अगर कुछ नहीं खाना। लेकिन अगर जाकर वहाँ बैठे और जो भी लाएं, वो कुछ फल लाएं, वो कुछ खाने को लाएं, स्वीट लाएं, बोला नहीं चाहिए, देखे भी नहीं आप उसकी ओर, तो स्वाभाविक है उसको अपमान लगेगा। और यहाँ तो दुर्योधन, तो दुर्योधन ने पूछ लिया भगवान से कि अरे हम आपको इतना दे रहे हैं, आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, बताइए। तो पहला कारण तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया, भगवान ने कहा देखो मैं दूत हूं और दूत का काम जब तक पूरा ना हो तो उसको कुछ लेना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। अर्जुन दुर्योधन ने कहा ये तो सही नहीं है, ये तो आप ठीक नहीं कह रहे, आप सही से ही बताइए क्यों नहीं ले रहे, क्यों आप हमारा ये जो हम लोग स्वीकार, हम जो दे रहे हैं वो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं देखो दो स्थिति में किसी दूसरे का भोजन स्वीकार किया जाता है, एक अगर उससे प्रेम हो या वो हमसे प्रेम करता तब कर सकते हैं, या दूसरा जब हमें जरूरत हो, मतलब खाने को कहीं नहीं मिल रहा हो तो जहां मिले वहां खा लें। तो भगवान कहते हैं मुझे जरूरत तो है नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं कि मुझे कहीं खाने को नहीं मिल रहा है, और प्रेम तुम्हें है नहीं मुझसे, तो स्वीकार कैसे करो, सही है ना। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि दो ही अवस्थाओं में खा सकते, या तो प्रेम हो या जरूरत हो, तो यहां तो ना तो मुझे जरूरत है और ना तुम्हें प्रेम है मुझसे, तो कहां से खाऊं। तो और गुस्सा आ गया, बताइए किसी की गलतियों को निकाल देना, तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। तो फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, ये सब जो चीजें तुमने की हमें इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रेम तो छोड़ो, तुम मेरे भक्तों से द्वेष करते हो, तुम पांडवों से द्वेष करते हो, और अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों से द्वेष करता है उसका मैं कुछ स्वीकार नहीं करता। देखिए हम बता रहे थे शुरुआत में कुछ सिद्धांतों को भगवान स्थापित करेंगे, तो ये एक है कि भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है फिर वो मुझे कुछ भी अर्पण क्यों ना करे, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए भक्ति के सिद्धांत हैं बड़े महत्वपूर्ण, कि भगवान को हम अगर अर्पण कर रहे हैं और भक्तों की निंदा कर रहे हैं, भक्तों का अपमान कर रहे हैं, भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्ति मार्ग में जब भक्त भक्ति करना प्रारंभ करता है तो शुरुआत में उसका भाव ये होता है कि मैं और भगवान बस, वो भक्तों को नहीं देखता, अन्य लोगों को नहीं देखता, उसको लगता है बस मेरी पूजा हो रही है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, बस यही मेरी साधना है, इसी से मैं भगवान के धाम जाऊंगा। भगवान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए ऐसे भक्त को कनिष्ठ कहा गया। कनिष्ठ मतलब सबसे निचले स्तर का भक्त, जो अभी शुरू कर रहा है, उसको पता ही नहीं है भक्ति क्या है, उसको लगता है बस भगवान की मैं पूजा करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान नहीं होंगे। जैसे दुर्योधन क्या क्या नहीं अर्पण कर रहा, ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि जो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कोई थोड़ा सा जल अर्पण कर देता है, कोई पेड़ का पत्ता, पेड़ से फूल तोड़कर, फल तोड़कर अर्पण करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यहां तो दुर्योधन क्या क्या नहीं अर्पण कर रहा, सब कुछ अर्पण कर रहा, लेकिन भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे, प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि मुझे चार चीजें अर्पण की जा सकती हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ अगर कोई देता है तो मैं स्वीकार करता हूं, ये महत्वपूर्ण है उस श्लोक में। ज्यादातर हम लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोलकर समाप्त कर देते हैं, तो उस श्लोक में महत्वपूर्ण पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण है यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ भगवान को अर्पण करना, तब भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहां और दुर्योधन इतनी व्यवस्था कर रहे भगवान स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वो भक्तों से द्वेष करता। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि क्योंकि तुम पांडवों से जो मेरे भक्त हैं, तो जो मुझसे द्वेष करता, जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है, इसका अर्थ है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है इसका अर्थ है वो मुझसे प्रेम करता है। तुम क्योंकि द्वेष करते हो इसीलिए मैं कुछ यहां स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये जानना चाहिए, भगवान कहते हैं कि अगर कोई, एक स्थान पर भगवान ने कहा है कि अगर कोई अपना, अपने आप को मेरा भक्त कहता है तो वो भक्त नहीं है मेरा, लेकिन अगर वो मेरे भक्तों का भक्त कहता है तो वो सच्चा भक्त है मेरा। अर्थात भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा की जाती है। तो इसलिए भक्ति के स्तरों में एक स्तर होता है जहां व्यक्ति केवल भगवान को जानता है, बस मैं और भगवान, उसको बहुत निचला स्तर। लेकिन उससे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति भगवान के भक्तों को महत्व देता है। वो ये जानता है कि भगवान है, भगवान की पूजा करनी है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग उनके भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भक्तों के साथ मित्रता का भाव करता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, और जो द्वेषी हैं भगवान के भक्तों के, उनको दूर रखता है, उनकी उपेक्षा करता है। तो ऐसे वो, और जो जो उनसे थोड़े से कम है भक्ति में, उनको बढ़ावा देता है भक्ति में। तो दूसरे स्तर का भक्त है। तीसरे स्तर का भक्त जो सर्वोच्च माना गया है वो कौन है? जो सब में भगवान को देखता है, वो भेद नहीं करता, वो सब में भगवान को देखता है। तो ये भक्तों की श्रेणियां हैं। तो ऐसे भक्तों से अगर हम द्वेष करते हैं, ऐसे भक्तों की अगर हम सेवा नहीं करते, द्वेष करने से भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये भगवान यहां दिखला रहे कि हालांकि दुर्योधन ने इतनी सारी व्यवस्था की भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान भी भक्तों को प्रिय हैं और भक्त भगवान को। जैसे एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य, जो बहुत महान आचार्य हैं, तो उनके विषय में कथा बताई जाती है कि वो एक गांव में गए और उस गांव में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेज दिया। तो उनका कोई शिष्य था उस गांव में जो बहुत अमीर था, बहुत अमीर, कहा जाओ उसके पास जाओ, उसको कहो कि गुरु महाराज आए हैं। तो ये चले गए दोनों। अब दोनों गए और उन्होंने जाकर उनको कहा कि गुरु आए हैं। फिर कहकर जब वापस आए तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि क्या किया उसने, तो तुमने जब कहा, तो उन्होंने कहा महाराज वो बड़े खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, आप आए हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, सजाना शुरू कर दिया, भोजन प्रसाद बनवाना शुरू कर दिया, बड़े प्रसन्न हो गए वो, अभी व्यवस्था सारी कर दी है, चलिए हम जाएंगे। रामानुजाचार्य ने पूछा कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आपके साथ कैसा आचरण किया, मैंने आपको भेजा था, आपके साथ कैसा आचरण किया? तो उन्होंने कहा कि आज वो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको ध्यान नहीं रहा हमारा, तो इसलिए कोई बात नहीं, वो तो हम लोग थे, फिर वापस आ गए, उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा, मतलब हमारे साथ कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो गए तो उसी समय लग गए। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, एक काम करो, दूसरा एक शिष्य है मेरा इसी गांव में जो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ धन नहीं, उसके पास जाओ। तो उसके पास चले गए, फिर उसके पास से वापस आए तो रामानुजाचार्य ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि हाँ हमारा वो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को भी ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी है। तो जब उसने सुना कि गुरु आए हैं, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सोचने लगा मैं क्या करूँ, कैसे उनकी सेवा करूँ। अच्छा, लेकिन आपके साथ क्या किया? हाँ, उसने हम लोगों को पहले बिठाया, फिर उसने हमको जल दिया, बेचारे के घर में थोड़ा बहुत जो कुछ था वो ला कर दिया, हम लोग को बहुत अच्छा बैठने का स्थान दिया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं उसके घर जाऊंगा जो गरीब है। तो ये शिष्य ने कहा महाराज वो उतनी बड़ी वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, सारा सजा रहे हैं, सब उन्होंने सब लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और इतना बड़ा उत्सव वो करने वाले, आप वो छोड़ के इनके घर में? बोले मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि उसने आपके साथ अच्छा आचरण नहीं किया, आपका आदर सम्मान नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति ने जिसके पास कुछ नहीं था, भले गरीब था लेकिन जो था वो आपको अर्पण किया, इसीलिए मैं इनके पास जाऊं। तो भगवान भी ऐसे ही हैं कि जो उनके भक्तों का आदर कर रहा है उसके पास भगवान जाते हैं। ये बड़ा सरल सिद्धांत है। जैसे माता पिता होते हैं, आप उनका गुणगान नहीं कीजिए लेकिन उनके बच्चे का गुणगान कर दीजिए तो उनको पसंद होता, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये ठीक है ना। तो ऐसे भगवान के लिए उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, तो भक्तों का गुणगान होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। और ये कह के भगवान पुनः विदुर के घर चले गए। तो विदुर क्या खाएंगे, और विदुर क्या थे, विदुर बड़ा सरल जीवन जीते थे, विदुर कोई ऐश्वर्य का जीवन नहीं जीते थे, हालांकि जी सकते थे, मंत्री थे, ऐसा नहीं था कि बड़े गरीब थे, लेकिन सरल जीवन जीते थे। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास सुविधा होते हुए भी वो सरल जीवन जीते हैं, कोई बहुत ज्यादा भोगों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि भोगों में पड़ने से भगवान को भूलने की संभावना नहीं, निश्चित भगवान को भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए लोग भोगों में नहीं पड़ते हैं, जो भक्त हैं वो सरल जीवन बिताते हैं। तो विदुर हालांकि इतने बड़े मंत्री थे, इतने बड़े राज्य के हस्तिनापुर के, लेकिन बड़ा सरल जीवन जीते थे। तो श्री कृष्ण को उन्होंने बुलाया और फिर तो ये सब बोलकर जब चले गए श्री कृष्ण, तो सबको बड़ा दुख हुआ, भीष्म को, द्रोणाचार्य को, बाकी जितने थे कृपाचार्य और वहां के राजा जो उस समय बैठे थे, कि अरे कृष्ण आए हैं और वो ये दुर्योधन का छोड़ के चले गए। तो वो सब गए उनके साथ पीछे पीछे विदुर के घर, और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, ठीक है आप दुर्योधन का स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ चलिए। भीष्म ने कहा मेरे, लेकिन भीष्म का भी आता तो वहीं से है ना डिपार्टमेंट। भीष्म ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, ठीक है उसके नहीं, हम आपको बड़ी अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने उन लोगों से सबसे कहा कि आपने मेरी सेवा करने की इच्छा की, बस उसको मैंने स्वीकार कर लिया, आपकी सेवा स्वीकार हो गई, लेकिन मैं रहूँगा विदुर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था। तो फिर उस समय वे लोग सब वापस चले गए। तो भगवान यहां दिखलाते हैं कि अगर कोई हृदय से भगवान की सेवा करने की इच्छा भी करता है, अभी सेवा नहीं की है, तो उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अगर वो हृदय से शुद्ध, हृदय से शुद्ध भाव से है। दूसरी ओर अगर कोई गलत भाव से पूरी सेवा भी कर रहा है तो भगवान नहीं स्वीकार करते। देखिए अंतर, दुर्योधन सेवा कर रहा था भगवान ने नकार दिया, इन लोगों ने सेवा की इच्छा की कि आप चलिए हम आपकी सेवा करेंगे, भगवान ने कहा स्वीकार है, मैंने स्वीकार कर लिया आपकी सेवा। तो ये भगवान हैं जो भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, जो भाव को देखते हैं। इसीलिए जब हम सेवा करें भगवान की, तो सेवा में भाव महत्वपूर्ण है। सेवा तो है ही, लेकिन सेवा में भाव, जैसे एक प्रसिद्ध कथा है ना कि जब विदुर के घर गए तो उन्होंने केला का छिलका, ये आगे आएगी कथा। तो भगवान भाव देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि सेवा में क्या हो रहा है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सेवा ठीक नहीं करनी चाहिए। भगवान का राजभोग बन रहा है तो कैसे भी कच्ची रोटी बनाई, चावल कच्चे हैं बनाकर दे दिया, क्यों, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान को क्या सेवा से क्या मतलब है। नहीं, अगर हमारा अच्छा भाव है तो हम अच्छे से अच्छी चीज़ें भगवान को अर्पण करते हैं। तो इसीलिए सेवा में भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान की सेवा करें तो सही भाव से होनी चाहिए, द्वेष रहित होकर होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, भक्तों के दास के रूप में उस सेवा को करना चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भक्तों के प्रति अपराध करके, भक्तों से द्वेष करके, अपने किसी भौतिक कार्य को स्थापित करने के लिए की गई सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार करते हैं कि उस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं जिसमें सबसे पहले सही भाव हो। दुर्योधन का सही भाव नहीं था, दूसरी चीज भगवान के भक्तों के प्रति वो भक्त अनादर नहीं करता हो। जब भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे देता है, इसका अर्थ ये नहीं है। इस शब्द को समझना चाहिए। भक्त्या मतलब क्या है? भक्त्या मतलब वो व्यक्ति जो भक्तों की पूजा करता है, उसको भक्ति मानी है भगवान ने। तो ऐसी भक्ति से, अर्थात भगवान को कुछ अर्पण करने में पहली चीज भाव ये होना चाहिए कि वो भक्तों का द्वेषी ना हो। भक्तों का द्वेषी व्यक्ति कुछ भी लाए भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी हम भक्ति करते हुए द्वेष करते हैं। भगवान कपिल इसको तमोगुणी भक्ति कहते हैं। तमोगुणी भक्ति मतलब किसी दूसरे का नाश करने के लिए अगर भक्ति की जाए। आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरों का नाश करने के लिए भक्ति करता है? नहीं ना? अच्छा है, करनी भी नहीं चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं भक्ति, भगवान के सामने आते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ उसका नाश हो जाए, इत्यादि इत्यादि। ये तमोगुणी भक्ति, भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति इसको स्वीकार नहीं। तो इसीलिए भक्तों को प्रसन्न करते हुए सही भाव में भगवान की सेवा जब की जाती है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे वो वहां से चले गए, विदुर क्या रहे। और अब विदुर क्या रात्रि में बात होने लगी, तो विदुर भगवान से कहने लगे कि दरअसल आप आए हैं ये ठीक नहीं हुआ, आपको आना नहीं चाहिए था। विदुर कह रहे भगवान से आपको आना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि विदुर सब सुन चुके हैं ना, दुर्योधन क्या करने वाला है, गिरफ्तार अरेस्ट करने का सोच रहा है। विदुर जानते हैं कि उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन विदुर ये भी सोचते हैं कि मेरे सामने भगवान का अपमान होगा, मुझे देखना पड़ेगा। एक भक्त के लिए ये भी कितने बड़ा उसके लिए अपराध है कि अगर उसकी आंखों के सामने भगवान का अपमान हो रहा है और उसको चुपचाप देखना पड़ेगा। विदुर जानते थे ये होगा कल जब सुबह जाएंगे सभा में, यही होने वाला है। इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान से रात्रि के समय कि आप आए ठीक नहीं हुआ, आपको आना नहीं चाहिए था। ये दुर्योधन दुर्बुद्धि, इसको सबने समझाया, इसने अब बड़ों की बातें सुनना बंद कर दिया है, अपने वरिष्ठों का कोई मान सम्मान नहीं करता है, ये केवल अपमान करता है, और इसीलिए कल ये आपका भी अपमान करने वाला है। अब सीधे तो नहीं बता सकते थे कि क्या प्लान है दुर्योधन का, क्योंकि भगवान को ऐसे कहे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनको बुरा ये लगा कि कल भगवान का अपमान होगा, भरी सभा में बातें नहीं सुनेंगे, ना धृतराष्ट्र सुनेंगे, ना दुर्योधन सुनेंगे, जो ये बोलेंगे मानेंगे नहीं, सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसीलिए विदुर कहने लगे कि ये ठीक नहीं हुआ आपकी, आप आए, अच्छा होता आप नहीं आते, वो अच्छा था, क्योंकि युद्ध तो वैसे भी होना है। विदुर भी जानते हैं कि युद्ध होना है, कृष्ण आए या ना आए युद्ध तो होना है, तो फिर कृष्ण का अपमान क्यों हो। तो भक्त, देखिए भक्त और भगवान में एक प्रतियोगिताएं चलती हैं, कई प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता चलती है कि भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है और भगवान भक्त का, ये एक चलती है प्रतियोगिता। दूसरी प्रतियोगिता चलती है कि भक्त भगवान का रक्षण करना चाहता है और भगवान भक्त का। भक्त अपनी रक्षा के विषय में नहीं सोचता, भगवान की रक्षा के विषय में सोचता। भगवान की रक्षा मतलब उनका अपमान नहीं हो, उनका मान बढ़े, तो ये भाव बहुत अच्छा है। लेकिन आप बताइए, क्या ऐसा कोई भक्त है जो भगवान की रक्षा कर सकता है? भगवान की रक्षा कौन कर सकता? भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन भक्त का भाव होता है कि मुझे भगवान की रक्षा करनी है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक समय पाश्चात्य जगत में एक न्यू वृंदावन प्रभुपाद ने बनाया, तो एक समय वहां पर कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, बंदूकें इत्यादि, तो उस समय कुछ गायें मारी गई, गोलियां लगी उनको चली। तो शायद प्रभुपाद उस समय, जहाँ तक हमने पढ़ा है विद्यालय में, लेकिन वृंदावन में थे, तो उनको सूचना मिली, तो उनको आकर बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया और कुछ गायें मर गईं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि कितने ब्राह्मण मरे, ब्राह्मण मतलब जो भक्त हैं, कितने मरे? तो भक्तों ने कहा एक भी नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को गायों की और विग्रह की रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। तो विग्रह मतलब भगवान है, तो भगवान की रक्षा भक्त को करनी चाहिए, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो कैसे भक्त भगवान की रक्षा कर सकता है, अब बताइए, भगवान भक्त की रक्षा करते हैं या भक्त भगवान की रक्षा करते हैं, क्या होता है? भगवान को जो चीज प्रिय है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान की रक्षा कैसे भक्त कर, भक्त रक्षा करता है भगवान करते हैं, हाँ धर्मो रक्षति, वो धर्म के लिए, यहां भगवान की बात आ रही है, खुद भगवान है, तो कैसे भगवान की रक्षा भक्त कर सकता है वो बताइए। हाँ विग्रह के रूप में, ठीक है, मतलब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है, फिर पूजा क्यों करना उनकी? जब वो विग्रह के रूप में आते हैं तो हमारी सेवा स्वीकार करने आते हैं, तो उन सेवा में एक ये भी है कि उनकी रक्षा करना। ओके, बहुत अच्छा, यस। भक्त ऐसा भाव रखता है, संकल्प करता है, भगवान उस भाव की रक्षा करते हैं। अच्छा, आपको शंकराचार्य जी का मठ ज्वाइन करना चाहिए शब्दों को इधर उधर घुमाने के लिए। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, और अगर भक्त भी किसी को प्रचार करते हैं, ओके, प्रचार के द्वारा वो कृष्ण के अस्तित्व को बचाते हैं। ओके, हाँ भगवान के शब्दों को मानना भगवान की रक्षा करने समान है। ओके, भगवान के आदेश का पालन करना उनकी रक्षा करने के समान है। और हाँ वही ये बता रहे थे कि लोग जो भगवान को नहीं मानते, एक दृष्टि से भगवान को मार रहे हैं, तो हमें वो स्थापित करके उनकी रक्षा करना, वही कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी वही कहा, प्रचार यही आपने कहा। हाँ, और कोई समय हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो बचाया जा सकता था, लेकिन हमारा कहना यह है कि भगवान का इतने शक्तिशाली नहीं है कि भक्त को उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो जिसकी जिसकी रक्षा, जैसे कहा जाता है ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, तो जिसकी रक्षा भगवान करे, तो वो कैसे भगवान की रक्षा कर सकता है? हाँ इतना आप लोग स्पेकुलेशन में बढ़िया हो, कहां कहां से घुमा रहे इधर। यस, भगवान की इच्छा है भक्त उनकी रक्षा करे, इसीलिए भगवान ऐसे बन जाते हैं कि प्रतीत होता है कि भक्त को उसकी रक्षा की, उनकी रक्षा की जरूरत है। ये प्रेम है, भगवान प्रेम वश ऐसे हो जाते हैं, जैसे बांध दिया यशोदा मैया ने, आपको खुला है, खोलने के लिए तैयार है, कौन खोले उनको, और खुद को भी नहीं खोल पा रहे हैं, सारी दुनिया को बंधन में डालते हैं इस भौतिक जगत में, और खुद बंधे हुए हैं तो जरा सी रस्सी नहीं खोल पा रहे, तो उनकी रक्षा करने के लिए फिर वो आना पड़ता है नंद महाराज को, कोई भी नहीं खोल पा रहा उनको, भगवान पुकार रहे हैं, अरे खोलो फ्रेंड्स, आंख बंद करके खड़े देखना नहीं, कौन खोले, यशोदा के डंडा पड़ेगा। नंद महाराज आए तो यशोदा मैया उनको तो कुछ नहीं कह सकती हैं, तो नंद महाराज ने खोल दिया, अरे क्या है इसको बांध दिया किस। तो प्रेम है और प्रेमवश भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे प्रतीत होता है कि भक्त भगवान की रक्षा कर रहा है। भक्त भगवान की रक्षा नहीं करता है, लेकिन ऐसा उसको प्रतीत होता है। क्यों? इससे उसका वात्सल्य भाव बढ़ता है, तो भगवान उसके हृदय में उस रस को बढ़ाने के लिए ऐसी लीला करते हैं जिससे प्रतीत होता है कि वो भगवान की रक्षा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भगवान की रक्षा करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। भक्त में शक्ति कहाँ से आती है? अगर वो भगवान की रक्षा कर भी रहा है तो शक्ति कहाँ से आएगी? भगवान ही दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान शक्ति देकर उसको प्रेरित करते हैं और फिर उस लीला में आनंद देते हैं। भगवान को आनंद आता है जब वो भक्तों के हाथ में एक खिलौना बन जाते हैं, तब बड़ा आनंद आता है कि हाँ, भक्त मेरी रक्षा कर रहे हैं, भक्त मुझे बचा रहे हैं। जैसे जब कालिया दमन की लीला हुई, तो जब वो कालिया जब उन अंदर कूद गए तो सब ब्रज में पता चला, सब भाग कर आए, तो सारे लोग बेहोश हो गए ये सोच कर कि कृष्ण अंदर चले गए, कोई देख नहीं पा रहे थे कृष्ण को, और अंदर इतना बड़ा नाग है कालिया, खा जाएगा। तो सारे चिंतित होकर सब बलराम जी को छोड़कर बाकी सब मूर्छित हो रहे हैं। नंद महाराज, यशोदा, बार नंद महाराज समझा संभाल रहे हैं यशोदा को, वो मूर्छित हो रही हैं, फिर ये मूर्छित हो रहे हैं, सब चिंता में हैं। बलराम जी हंस रहे थे केवल, खड़े होकर, अभी आ जाएगा, चिंता है। बलराम जी को पता था कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसे ये चिंता, ये जो भाव प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीलाओं को करते हैं, तो भक्त का ये भाव होता है। तो ऐसे विदुर ने सारी बहुत समय बात किया रात्रि में, और भगवान से कहा कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप आए हैं, आप प्रयास कीजिए, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा युद्ध तो होना ही है। और फिर अब श्री कृष्ण उस सभा में अब सबके सामने बोलने वाले हैं, और फिर आगे कैसे दुर्योधन क्या कहते हैं, और दुर्योधन ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान ने क्या किया, इसको अगले सोमवार को हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा मन में? यस, शुरुआत से बोलो। तो उनका क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए विरह किया जो अब शुद्ध हो चुके थे, भगवान के धाम चले गए, उनका स्मरण किया। तो जो ऐसे भगवान के धाम कौन जाते हैं? शुद्ध भक्ति जाते हैं ना, जो भी जाएंगे शुद्ध भक्त होंगे, बिना उसके तो नहीं जा सकते। तो वो शुद्ध हो गए थे, अब भगवान किसी भी तरह शुद्ध कर सकते। कालिया को कैसे शुद्ध किया भगवान ने? उसके फणों पर नाच करके उसको शुद्ध किया। और वही उनकी पत्नियों ने बाद में कहा ना, कालिया की पत्नियां जब प्रार्थना कर रही थीं तो भगवान ने मानो पूछा हो कि क्यों अपने पति को चाहती हो, वो बोली छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्यों चाहती हो, आसक्ति है? तो बोले नहीं, आसक्ति नहीं है, अभी तो भक्त हो गया है ना, इसलिए आसक्ति है, आपके चरण पड़ गए हैं उसके सर पे, तो महान भक्त हो गया, तो इसीलिए उसको कह रहे हैं। तो इसीलिए जिन पत्नियों ने या जिन लोगों ने उस समय विरह किया या उनका स्मरण किया कि जो शुद्ध भक्त हो चुके हैं भगवान के शुद्ध भक्तों का, तो निश्चित उन्हें आध्यात्मिक लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसे भक्तों की विरह या ऐसे भक्तों के बारे में स्मरण करना निश्चित उनका लाभ मिलना है। तो हो सकता है भगवान उन्हें भी लेकर गए हों, लेकिन वर्णन नहीं है कि उन सबको ले गए कि नहीं, लेकिन लाभ तो निश्चित मिला होगा, है ना। यस
भगवान क्यों स्वयं इच्छा किए शांति के उत्पन्न कर जाने के लिए, और तो जाने से पहले ही युधिष्ठिर महाराज को बोल सकते थे कि युद्ध तो होना ही है, जाना क्या क्यों
जरूरी। एक कारण कि जितनी भी लीलाएं युद्ध होने से पहले हुई हैं तो वो सब भी भगवान की योजना थी, तो भगवान तो उनको वन में जाने से भी रोक सकते थे, है ना, क्या जरूरत है जाने, युद्ध तो होने वाला, अभी कर लो, मना करो नहीं जाएंगे, चलो युद्ध करो। तो पहली चीज़ की लीला मात्र के लिए। दूसरी चीज़, जैसे हमने इस प्रवचन के प्रारंभ में बताया कि एक ही लीला से कितनी सारी चीज़ों को स्थापित कर रहे हैं, तो भगवान जब लीलाएं करते हैं तो ज्ञान देने के लिए करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। अब अगर नहीं जाते तो विदुर को आनंद नहीं आता, और विदुर तो बाद में चले गए थे, विदुर फिर मिले ही नहीं उसके बाद, ये आखिरी बार विदुर से मिले थे, इसके बाद विदुर कहाँ मिले, क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले विदुर चले गए, और जब तक विदुर को पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया तब तक कृष्ण चले गए थे, राइट। तो ये अंतिम भेंट थी, तो विदुर से मिलने गए थे, इसीलिए उसके घर रहे। तो लोग ये पूछते रहे विदुर के घर ही क्यों रहे, और कोई नहीं था, क्योंकि विदुर से अंतिम बार मिलने गए थे, पता है अब फिर मिलेंगे नहीं विदुर। तो ऐसे कई कारणों के एक साथ पूरा करने के लिए भगवान ने ये लीला की, ठीक है। और कोई
यस तो
बहुत अच्छा कि योगी चले गए, भगवान क्यों नहीं जाए गए। जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, हनुमान जी छलांग लगा के चले गए, और रामचंद्र जी को जाना था तो ब्रिज बनाना पड़ा, राइट। छलांग क्यों नहीं लगाया, उनका एक भक्त जरा से छलांग लगा सकता है, भगवान नहीं लगा सकते। जब भगवान एक साधारण मनुष्य की लीला करते हैं तो उसमें अति मानवीय कार्य बहुत कम करते हैं, दिखाते बहुत कम है, करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, लेकिन कम करते। तो एक मानव की लीला है कि उन्हें चलकर जाना है, उन्हें रथ पर जाना है, तो एक साधारण मनुष्य, मतलब उस समय जैसे वो एक क्षत्रिय के रूप में हैं तो उस समय वो ऐसे कार्य किया करते थे। लेकिन जहाँ आवश्यकता थी, जैसे द्रौपदी के समय में, तो उस समय भगवान रथ पर सवार होकर उतनी दूर से नहीं आए, फिर वो तुरंत आ गए क्योंकि समय नहीं था। लेकिन साधारणतः जब वो लीला करते हैं तो इन चीज़ों को प्रकट नहीं करते, अपनी भगवत्ता को जितना वो कम दर्शाएं उतना उनको लीला में आनंद आता है, तो इसीलिए वो साधारण होते हुए गए। एक कारण, दूसरा कारण, हमने पूरा उनके ट्रैवल जो उन्होंने किया उसका वर्णन नहीं किया, किन किन स्थानों से गए, तो उन सारे स्थानों में वो ऋषि मुनियों को मिल रहे थे, अलग अलग जगहों पर जहाँ जा रहे थे वहाँ सब ऋषि मुनियों को मिले। दरअसल भगवान का एक उद्देश्य इस अवतार का या आने का ये भी था कि वो पृथ्वी के जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको दर्शन देना चाहते थे, और उन्होंने दिए, केवल बद्रिक आश्रम में नहीं दिए। और इसीलिए जीवन जब वो जा रहे थे इस धराधाम को छोड़कर, तो उन्होंने उद्धव को यहाँ छोड़ दिया, उद्धव को संदेश दिया और कहा जाओ ये बद्रिक आश्रम में दो, मैं उन लोगों को नहीं मिल पाया बस, बाकी सबको मैंने मिल लिया। तो उन जगहों पर भी भगवान उनसे मिलते हुए जा रहे थे, तो एक कारण वो भी था, और दूसरा एक मानवीय लीला कर रहे हैं तो उस हिसाब से। तो रामचंद्र जी भी मानव लीला कर रहे हैं तो उड़कर नहीं गए हनुमान जी की तरह, ब्रिज बनाया, लेकिन ब्रिज बनाना ये एक अति मानवीय कार्य है, तो ऐसे उन्होंने किया। यस हाँ, एक सेकंड, इनका प्रवचन स्पष्ट नहीं है वो, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि बाकी सबको तो युद्ध में मिलने वाले थे, विदुर को मिलने वाले नहीं थे, विदुर तो युद्ध नहीं करने वाले थे, भगवान जानते थे तो इसलिए उनकी सेवा स्वीकार कर रहे थे। दूसरा ये भी दिखाना चाहते थे भगवान की कैसे विरुद्ध ये दुर्योधन का बहुत स्पष्ट रूप से विरोध हर समय हर सभा में विदुर ने किया। हालांकि उन लोगों ने सहयोग किया दूसरों ने थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट विरोध नहीं किया, लेकिन विदुर ने किया। और जहां तक द्रौपदी का है, केवल विदुर ने ही वहां पर विरोध किया। तो कई कारण हो सकते हैं, तो केवल एक कारण नहीं, कई कारण हो सकते हैं कि वो विदुर के घर गए। उन्हें अलग अलग भक्तों को आनंद देना था, और इस लीला में विदुर को विशेष आनंद मिला, क्योंकि पहले जब भी आए हैं वो कभी विदुर के घर नहीं रुके थे, मिलने जाते थे लेकिन विदुर क्या नहीं, तो इन सब क्या रुक चुके थे, भीष्म आदि का आतिथ्य वो स्वीकार कर चुके थे, तो अब विदुर का करना था। यस वो आज नहीं सुना है। राजा वेण के समय स्वयं कृष्ण उपस्थित नहीं थे, तो ऋषि मुनि या भगवान के भक्त ये जानते हैं कि अगर भगवान उपस्थित हैं वो पहले कुछ करें, वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे। जैसे जिस समय शिशुपाल का वध होना था तो सभा में सब थे वहाँ पर बैठे हुए, जिनको क्रोध आ रहा था, भीम थे जो बड़े बड़े महारथी वो मार सकते थे शिशुपाल को, लेकिन शिशुपाल निंदा करे जा रहा था तो भीम जाना चाहते थे, भीष्म ने रोक दिया, भीष्म ने कहा बैठे रहो। तो भीम ने ऐसे पूछा भी क्यों बैठे रहो, कोई निंदा कर रहा है उसको मान, भगवान है ना, तो वो कर रहे हैं मतलब कुछ तो कार्य होगा। तो यही चीज़ ऋषि मुनियों ने जानी कि जब भगवान का अवतार हुआ है तो निश्चित वो किसी कार्य से ही आए हैं, तो वो कार्य करेंगे, तो उनकी लीला में हम क्यों बाधा बने। हाँ, अगर भगवान आदेश देंगे तो हम करेंगे। वेण के समय भगवान थे नहीं, भगवान के अवतार थे नहीं कोई, तो बाद में पृथु महाराज आए, तो इसीलिए अपना कर्तव्य मानकर ऋषि मुनियों को ये कार्य करना पड़ा। लेकिन जब स्वयं भगवान उपस्थित हैं और उसी कार्य के लिए आए हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, तो फिर ऋषि मुनि उसमें आनंद लेते हैं लीला में, फिर वो उसमें जब तक भगवान नहीं कहें, हाँ अगर भगवान कहें किसी को कर, तब वो कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते। जैसे रामचंद्र जी की लीला में भी हम लोग देखते हैं ऋषि मुनि बहुत शक्तिशाली थे, मार सकते, जैसे विश्वामित्र मुनि, क्या वो मारीच सुबाहु को नहीं मार सकते थे बड़े आराम से, लेकिन वो रामचंद्र जी को लेके गए, आप आए हैं ना, चलिए आपकी लीला प्रारंभ कीजिए, ताटका को मारिए, इसको मारिए, वो सब बता रहे हैं कैसे मारना है, अस्त्र शस्त्र वो दे रहे हैं मारने के लिए, तो खुद नहीं मार सकते हैं, भगवान आए हैं वो करेंगे, उनका कार्य है लीला उनको करनी है, तो भगवान की लीला में फिर उस समय ऋषि मुनि इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, हाँ जी।
भगवान तो चाहते, अगर चाहते तो बद्रिकाश्रम जाके ऋषियों को दर्शन दे सकते
थे, उद्धव के लिए कुछ तो काम छोड़ना था ना, उद्धव क्या करते फिर, क्योंकि उद्धव को यहाँ छोड़ कर जाने वाले थे, तो उद्धव को उनको विदुर से मिलाना था, बद्रिकाश्रम भेजना था, विदुर से मिले, विदुर को मैत्री मुनि, सब प्लानिंग है पूरा भगवान का। जाने के समय दो ही लोगों से मिले, उद्धव और मैत्री मुनि, और उनको ज्ञान दिया, और वो चलकर उद्धव उधर आगे गए, मैत्री मुनि ने विदुर को दिया, वो भागवतम का हिस्सा बन गया। तो भगवान की सारी योजना प्लान पूरा फिक्स, क्या होने वाला। और कोई प्रश्न? वैसे उनको टाइम नहीं मिला, बड़े बिजी थे, क्योंकि दुर्योधन आदि ने समय नहीं दिया, और फिर युद्ध इतना बड़ा हुआ, और फिर जाना था उनको, समय आ गया वापस जाने का, तो समय नहीं मिला, क्योंकि बद्रिकाश्रम वगैरह तो व्यक्ति जीवन के अंत में जाता है ना, तो भगवान को टाइम ही नहीं मिला, तो क्या करें। और कोई प्रश्न? ठीक है, तभी कीर्तन करेंगे कुछ समय, और फिर आप लोग प्रसाद लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।